إن الله بصير بالعباد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بولي الله الكريم. أما بعد، فقد قال الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ رسول کو ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونے عمل قرار دیا، تم اگر رول ماڈل کی تلاش میں ہو، تم اگر کسی نمونے عمل کی تلاش میں ہو، تم اگر کوئی ایسی شخصیت اور ایسی ذات کی تلاش میں ہو کہ جس کو دیکھ کر عمل کرتے جاؤ، تو رسول کی ذات تمہارے درمیان بہترین نمونے عمل ہے، بہترین رول ماڈل اور بہترین اسوہ ہے. اور جب بھی کسی معصوم کی ولادت یا شہادت کا موقع ہوتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس معصوم کے متعلق اس کی سیرت کے جوانی پر نظر کی جائے، اور اس معصوم کی سیرت کو خود اپنی زندگیوں میں پیادہ کیا جائے، اپنی زندگیوں میں عملی بنایا جائے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہمارے مدارس میں ہوتا یہ ہے کہ امیر المومنین اور سید الشہداء کے علامہ دین ائمہ کا ذکر ہوتا، بالکل نام لینے کی حد تک ہوتا ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی. شام شہادت حضرت علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کسی مناسبت سے حضرت کی سیرت کے پانچ گوشے، حضرت کی سیرت سے پانچ نقطے جو قابل توجہ اور ہر مومن کے لیے نمونۂ عمل ہے، انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. کیونکہ حضرت ہم جانتے ہیں کہ حضرت کی عمر کل 55 سال تھی، 55 سالہ عمر میں 20 سالہ دور امامت اور 35 سالہ آپ کی زندگی آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ گزری، گرچہ آپ کے والد بزرگوار کی بیشتر زندگی قید خانے کی نظر ہوگی، لیکن 20 سالہ دور امامت میں 3 سال آپ کے خراسان میں گزرے، 3 سال آپ کے ایران میں گزرے، بقیہ زندگی آپ کی مدینہ میں گزرے. اس 20 سالہ دور امامت میں جو واقعات رونما ہوئے اور جو آپ کی سیرت کے گوشے نمایاں ہو کر ہمارے سامنے نقوش بن کر ابھرے، ان میں سب سے پہلا قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ حضرت کے زمانے میں فرقہ سازی کا بازار گرم ہو گیا. سب سے بڑا بحران جو حضرت کو جس کا سامنا تھا وہ ہے فرقہ سازی، کیونکہ ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا تھا اس زمانے میں کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ ساتویں امام کو اسی طرح اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہے جس طرح سے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا ہے، اور امامت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے آپ کی ذات پر، امامت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ کوئی امام آنے والا نہیں ہے، آپ کوئی امام چونکہ یہ فرقہ ساتویں امام کی امامت پر متوقف ہو گیا، رک گیا، ٹھہر گیا، اسی وجہ سے اس فرقے کا نام واقفیہ پڑ گیا، یعنی ساتویں امام پر متوقف ہو جانے والا فرقہ، ساتویں امام پر رک جانے والا فرقہ۔ اور پھر اس فرقے کو بنانے والوں میں وہ افراد شامل تھے جو امام کے نمائندے تھے، اور پورا اس فرقے کو بنانے کے پیچھے جو مقصد تھا ان کا کہ کسی طرح سے وجوہات شرعیہ کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے، کسی طرح سے مال اور خمس بٹورا جائے۔ اس انگیزے اور اس مقصد کے تحت یہ فرقے کو وجود میں لایا گیا، اور بارہا امام نے اس فرقے کی نفی کی، واقفیہ پر ملامت کی۔ آٹھویں امام، یعنی ساتویں امام کے زمانے میں ساتویں امام کو یہ کہنا پڑا کہ ویل لمن ظلمہ کما ظلم علی ابن ابی طالب، ویل ہو، وائے ہو ان پر جو میرے فرزند علی ابن موسیٰ پر ظلم کریں گے جس طرح سے علی ابن ابی طالب پر ظلم کیا گیا، وائے ہو ان لوگوں پر جو میرے بیٹے پر ظلم کریں گے جس طرح سے علی ابن ابی طالب پر ظلم کیا گیا۔ علی ابن ابی طالب پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا گیا کہ ان کا حق خلافت ان سے غصب کر دیا گیا، سب سے بڑا ظلم کہ آپ کا جو حق امامت، آپ کا جو حق خلافت تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا۔ اور یہاں پر آٹھویں امام کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد، یعنی آپ امام نہیں ہیں، ساتویں امام پر امامت کا سلسلہ متوقف ہو چکا ہے، اب کوئی امام آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کے تعلق سے ساتویں امام نے فرمایا وَيْلٌ لِّمَن ظَلَمَهُ كَمَا ظَلَمَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وائے ہو ان پر جو میرے اس فرزند پر ظلم کریں گے جیسا کہ علی بن ابی طالب پر ظلم کیا گیا۔ تو واقفی فرقے کی مخالفت، اور پھر امامت کے خالص اسلامی مفہوم کو لوگوں تک پہنچانا امام کی زندگی کا سب سے قابل توجہ نقطہ ہے، یعنی فرقے بننے نہیں دینا۔ اور قرآن نے بھی منع کیا ہے کہ تم فرقے فرقے مت ہو جاؤ، بلا تفرقوا، فرقے فرقے مت ہو جاؤ، آپس میں فرقے مت بناؤ، فرقہ سازی مت کرو۔ اور فرقہ سازی کے بحران پر قابو پانا یہ امام کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا اس زمانے میں، اور اپنی درایت اور اپنے صبر اور اپنی ذکاوت کے ذریعے سے آپ نے اس پر قابو پا لیا۔ اور واقعی فرقہ جو یہ ادعا کر رہا تھا کہ ساتویں امام پر امامت ختم ہو گئی اور پھر کوئی امام آنے والا نہیں ہے، پھر آپ نے اس فرقے کا صدباب کر دیا۔ صدباب پڑھتے ہیں تو یہ فرقہ جب بنا، جبکہ چھٹے امام کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ جب ایک شخص یہ فرما، ایک شخص یہ نقل کرتا ہے کہ میں مکے کے سفر کو جا رہا تھا میرے والد کے ساتھ، اور ساتویں امام اپنے والد کے ساتھ مکے کے سفر میں ہمارے ہمراہ تھے، تو میرے والد نے چھٹے امام سے یہ پوچھا کہ آپ کے بعد امام کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد امام، ساتویں امام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے بعد امام یہ ہے، ان کے بعد امام کون ہے، تو فرمایا کہ ان کے بعد امام ان کا بیٹا ہے جو علم اور آگہی میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے، علم اور آگہی میں بڑا ہوا ہے۔ چھٹے امام کے زمانے سے آٹھویں امام کی امامت کا زمینہ فراہم کرنے کے باوجود بھی ایک فرقہ وجود میں آ گیا واقفیہ کے نام سے۔ چھٹے امام کے زمانے سے آٹھویں امام کی امامت کا زمینہ فراہم کر کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ایک فرقہ واقفی کے نام سے وجود میں آ گیا ہے، اور ساتویں امام اور آٹھویں امام نے لعنت کی ہے اس فرقے پر، یہ باطل فرقے پر۔ تو پہلا نقطہ امام کی زندگی کا جو ہمارے لیے مشغلے رہا ہے کہ ہم کو فرقہ بننے نہیں دینا، ہم کو فرقہ فرقہ ہونا نہیں، فرقہ سازی کی مہم میں ہم کو جٹنا نہیں، فرقہ سازی، جو بھی فرقہ بنایا ہے امام نے اس پر لعنت کی ہے، جس نے بھی فرقہ بنانے کی کوشش کی ہے امام نے اس پر لعنت کی ہے۔ امام کی زندگی کا پہلا نقطہ قابل توجہ۔ دوسرا نقطہ कि जिस जमाने में इमाम इमामत इलाही मनसब पर फायज हुए वो जमाना वो था जिस जमाने में मगरबी दुनिया के अफकार इस्लामी दुनिया में तर्जुमा होकर पहुंच रहे थे। मगरबी उलूम को तर्जुमा करके अरबी जबान में मुंतकिल किया जा रहा था। और जाहिर सी बात है जब उलूम एक जबान से एक तमद्दुन से एक इलाके से मुंतकिल होकर दूसरे इलाके में पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर शुबहात का उभरना वाज़ेह है, वहां पर शुबहात का उभरना लाजमी है। तो जब उलूम का जब मगरबी दुनिया से उलूम मुंतकिल होना शुरू हुए दारुल तर्जुमे कायम किए गए और हुकूमती पैमाने पर तर्जुमे करवाए जाने लगी किताबें बड़ी बड़ी मगरबी दुनिया के उलूम जब मुंतकिल होने लगे इस्लामी दुनिया में अरबी जबान में उसके तर्जुमे होने लगे तो उसका लाजमी नतीजा ये था कि लोग दीन के ताल्लुक से शुबू को शुबहात में मुब्तला हो जाए, लोगों के दीनी एतिकादात सुस्त पड़ जाए। ऐसी सूरत में इमाम ने जो सबसे संगीन जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली वो ये कि उलूम की यलगार के बावजूद भी दीन की बुनियादों को मुस्तहकम रखा, दीन की बुनियादों को सुस्त होने नहीं दिया, क्योंकि उलूम अपने साथ शुबहात और शुकों को तरदीद लेकर आते हैं। तो इमाम का जो सबसे बड़ा कारनामा दूसरा वो ये था कि आपने उलूम की अलगार और तर्जुमों की अलगार के बावजूद भी अफकार की अलगार के बावजूद भी दीन के पाए को सुस्त दीन की बुनियाद को सुस्त होने नहीं दिया, दीनी एतिकादात को आपने बहुत ही सहल अंदाज में आपने बयान फरमाया, दीनी एतिकादात को सुस्त होने नहीं दिया, क्योंकि उलूम की जब अलगार होती तो दीनी एतिकादात सुस्त पड़ जाते हैं, क्योंकि फिक्रों की अलगार फिक्रों की अलगार उस जमाने में अकीदे जबर इस हद तक फैल गया था कि इमाम को अकीदे जबर की नफी करनी पड़ी, अकीदे जबर उस जमाने में फैल गया था। ये दूसरी बड़ी काविश इमाम की अपने जमाने में। तीसरी बड़ी काविश जो काबिले तवज्जो है वो है जुल्म से मुकाबला, जो हर इमाम के दौर में देखा गया है, हर इमाम के दौर में जुल्म से मुकाबला। मामून की हुकूमत मामून का एक शख्स इमाम से ये सवाल करता है कि मामून के ताल्लुक से आपका क्या फरमाना है, तो फरमाते हैं कि मैं उसका चेहरा देखने को तक गुनाह कबीरा समझता हूँ, मैं मामून की तरफ देखने को तक गुनाह कबीरा समझता हूँ। दो लोग मदीने से इमाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, इमाम कहते हैं कि तुम में से एक शख्स नमाज पूरी पढ़ेगा और एक शख्स नमाज कसर करेगा, एक शख्स नमाज पूरी पढ़ेगा। जब इंसान सफर पे जाता है तो नमाज उसकी कसर हो जाती, जितनी चार रकत की नमाज है वो दो रकत में बदल जाती। इमाम फरमाते हैं कि तुम में से दोनों मेरे सामने जो हाजिर हुए हो एक शख्स नमाज पूरी पढ़ेगा एक शख्स नमाज कसर करेगा। फरमाया कि कसर वो करेगा जो इस नियत से मदीने से चला है कि वो मामून से मुलाकात करे, उसका सफर सफर है मासियत है, मामून से मुलाकात के लिए जो उसने सफर इख्तियार किया है उसका सफर सफर है मासियत है, वो नमाज पूरी पढ़ेगा, और जो मुझसे मुलाकात के लिए मदीने से निकला है वो नमाज कसर करेगा। यही वजह है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम के कभी भी जुल्म के मुकाबले में खामोश नहीं रहे, और अगर खामोश रहते तो ना शहीद होते ना कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त करते। उनका कैदोबंद की सहूलतों को बर्दाश्त करना उनका शहीद हो जाना इस बात की अलामत है कि कभी भी अइम्मा ने जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, कभी भी अइम्मा ने जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, हमेशा जुल्म के मुकाबले में डटे रहे, हमेशा जुल्म के मुकाबले में आहनी दीवार बनकर उसका मुकाबला किया। तीसरा काबिले तवज्जो नुक्ता, चौथा काबिले तवज्जो नुक्ता इमाम की जिंदगी का यह है कि आपने उस जमाने में जो लोगों ने जुल्म के खिलाफ अलम बुलंद किए, अलवियों ने और फातिमियों ने जो अलम जुल्म के खिलाफ बुलंद किए, इमाम ने गैर मुस्तकीम तरीके से अपनी हिमायत का ऐलान किया उनके साथ कि जो भी जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाएगा अली इब्न मूसा रज़ा उसकी हिमायत में हो जाएगा। कि जब भी जुल्म होगा जब भी जुल्म किया जाएगा और जुल्म के खिलाफ क़याम किया जाएगा तो अली इब्न मूसा रजा उस क़याम का उस क़याम की तायद करेगा, उस क़याम की गैर मुस्तकीम तरीके पर तायद करेगा, अलवियों की हिमायत करते रहेगा। पांचवा काबिल तवज्जो नुक्ता आपकी जिंदगी का ये है कि शियों की माली इमदाद, फुकरा मसाकीन की माली इमदाद पर अमल करेगा। आपने कभी भी अपने शियों की तरफ से अपनी तवज्जो को नहीं हटाया, बल्कि हमेशा हर हवाले से उनकी इमदाद करते रहे। कई वाकयात ईमान के ताल्लुक से मिलते हैं, और ये वाकया तो हर ईमान के ताल्लुक से मिलता है कि जब एक साइल मांगने के लिए आपके पास आया तो आप बगैर इसके कि अपना चेहरा उसको दिखा दे, आपने पैसों की वो थैली उसके हवाले कर दी। पूछने वाले ने जब पूछा कि क्यों आप अपना चेहरा उसको नहीं दिखाते, तो फरमाते हैं कि मैं नहीं चाहता कि उसके चेहरे पर जो शर्मिंदगी के आसार है मैं देखूं, मुझे ये बात गवारा नहीं है, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मैं उसको शर्मिंदा होता हुआ देखूं। कुरान मजीद भी फरमा रहा है कि इंसान दो तरह के लोगों की मदद करे, इंसान हक़ुल लिसाइल वल महरूम, एक वो जो मांगने वाले हैं, वो जो बर्मला मांग रहे थे उनको अपनी आबरू की फिक्र नहीं है, उनको अपनी आबरू के जाने की फिक्र नहीं है, वो लोग वो जो मांगते उनकी भी मदद करो, और वो जो अपनी आबरू की फिक्र करके मांगते नहीं है महरूम है उनकी भी मदद करो। और ऐसे तबके को तलाश करना पड़ता है, ऐसे मुस्तहब तबके को तलाश करना पड़ता है, ये ढूंढने से मिलता है तबका। वो शख्स जो आगे कह दे मैं मुस्तहब हूं, जो अपनी आबरू को दांव पर लगा दे उसको तो देना ही देना है, लेकिन वो तबका जो अपनी आबरू को दांव पर लगाना नहीं चाहता, उस जमाने में फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी के पास जो फुकरा और मसाकीन बैठा करते थे उनकी इस हद तक करामत थी, इस हद तक बाकरामत थे वो लोग कि देखने वाले ये तसव्वुर करते थे कि ये अग़निया है, ये मुतवम्मिल अफराद है, ये साहिब हैसियत अफराद है, दौलतमंद अफराद है, इस हद तक अपनी करामत की हिफाजत करते हैं। मस्जिद नबवी के पास जो फुकरा बैठा करते थे वो इस हद तक बाकरामत थे कि देखने वाले ये समझते थे कि ये पैसे वाले लोग हैं, दर हकीकत महरूम तबका था, अपनी करामत की उन्होंने हिफाजत कर रखी। तो इमाम के जमाने में ये पांच ये नुक्ते तो वो है जो हम अर्ज कर रहे हैं, एक तो बातिल फिरकों को रिवाज देने से इमाम इमाम का जिहाद, ये बातिल फिरकों को रिवाज नहीं देना है, जो फिरका जिसकी बुनियाद बातिल पर हो, जो बातिल फिरका है उसको रिवाज नहीं देना है, उन फिरकों का सद्देबाक कर देना है। वो फिरका ये कह रहा था कि सातवें इमाम को आसमान पर उठा लिया गया है, जिस तरह से हजरत ईसा को उठा लिया गया है, इमाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा को मैं खुद दफ्न होते हुए देख रहा हूँ, मैंने अपने बाबा को खुद दफ्न होते हुए देखा है, तुम ये कैसे कह रहे हो कि अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया जिस तरह से हजरत ईसा को बुला लिया है, मैंने अपनी आंखों से उनको दफ्न होते हुए देखा। इस तरह से बुहरानी हालात पर काबू पाना ये एक हुनर है, वाकई क्राइसिस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, मैन ऑफ द क्राइसिस, मर्द बुहरान, बुहरानी हालात पर काबू सिर्फ और सिर्फ दिरायत और सब्र से पाया जा सकता है, दिरायत के जरिए से, सब्र के जरिए से बुहरानी हालात पर काबू पाना। और इमाम ने बहुत ही सलीके से उस फिरके का सद्देबाक कर दिया, उस फिरके को खत्म करके रख दिया इमाम, वाकफिया फिरके को जो सातवें इमाम तक आकर रुक गया था। और नवे इमाम से जब इमाम के जवाद अलैहि सलाम से जब ये पूछा जाता कि हम आपके जब ये दरियाफ्त किया जाता हम आपके जज सैयदुल शुहदा की ज्यारत को जाएं या आपके वालिद इमाम रजा की ज्यारत को जाएं, तो फरमाते थे कि मेरे वालिद इमाम रजा की ज्यारत को जाओ, इसलिए कि सैयदुल शुहदा की ज्यारत को जाने वाले को चार इमामी भी है, शेष इमामी भी है, हफ्त इमामी भी है, यानी जो चौथे इमाम पर रुक गए, जो छठे इमाम पर रुक गए, जो सातवें इमाम पर रुक गए, आठवें इमाम की ज्यारत करो, मेरे वालिद की ज्यारत करो, ताकि ये पता चले कि तुम्हारा एतिकाद पूरे इमामों पर आठवें इमाम की ज्यारत करो, मेरे वालिद की ज्यारत करो, ताकि ये पता चल जाए कि तुम ईमानी एतबार से कामिल हो, एतिकादी एतबार से कामिल हो। इस तरह से फिरका साजी की मुखालफत की, फिरका बनने न देना है। और क्या एहतराम। आप देखें जब इमाम अलैहिस्सलाम इमाम अलैहिस्सलाम को मदीने से ले जाया जा रहा है मर्द की तरफ, जिसको हम तूस और खुरासान भी कहते हैं, इस्लाम के मानने वाले तमाम फिरकों में इमाम का एहतराम। जब नैशापुर इमाम पहुंचे, आज नैशापुर एक शिया आबादी कहलाती है, मशहद से करीब नैशापुर एक शिया आबादी है, लेकिन उस जमाने में शिया आबादी नहीं थी नैशापुर, लेकिन उसके बावजूद भी इतने इतने लोगों का जमा होना महज इस वजह से कि इमाम से एक हदीस सुन गए। वो कागज कलम लेकर वहां पहुंचे थे कि फर्जंद रसूल हमारे लिए कोई हदीस बयान कर दे। हमारे तमाम अइमा बिला लिहाज तमाम फिरकों में मकबूल रहे, तमाम फिरकों में उनका एहतराम रहा। हम जो उनके मानने का दावा करते हैं, आया हमने उस विरासत को बाकी रखा? क्या तमाम फिरके हमारा उसी तरह एहतराम करते हैं जिस तरह से हमारे अइमा का एहतराम करते हैं? और अगर नहीं करते हैं तो कमी हम में है, उनकी तालीमात में कमी नहीं है। हमने उनकी तालीमात को सही से अख्ज नहीं किया, हमने उनकी तालीमात पर सही से अमल नहीं किया कि दूसरे इस्लामी फिरके हमारा वैसा एहतराम अगर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तमाम अइमा का एहतराम तमाम इस्लामी फिरके करते हैं, मोहतरम जानते थे, तभी तो नैशापुर में इतनी बड़ी तादाद में रावियान जमा हो गए हदीस लिखने के लिए फर्जंदे रसूल से। तो आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह इस्मी वमन दखला इस्मी अमन मिन अज़ाब वलाकिन बिशर्तिहा वशुरुतिहा व अना मिन शुरुतिहा। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह किला है, अल्लाह का किला है, कलमतु ला इलाहा इल्लल्लाह इस्मी अल्लाह फरमा रहा है। आपने जो सिलसिला बयान किया है इसको कहते हैं सिल हदीस से सिलसिलतु ज़हब, वो हदीस जिसके रावियों की जो चेन है, जिसके रावी इतने मजबूत है कि इसको कहा गया सुनहरी हदीस, वो सिलसिलतु ज़हब यानी सोने के पाने से लिखी जानी चाहिए इस हदीस, यानी वो हदीस जिसके रावियों में झूल ली है। आप फरमाते हैं कि मैंने अपने जद से सुना, अपने जद ने रसूल को, मेरे जद ने रसूल खुदा से सुना, रसूल खुदा ने जिब्राइल से सुना, जिब्राइल ने अल्लाह से सुना है कि अल्लाह ही फरमाता है कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह इस्मी वमन दखला इस्मी अमन मिन अज़ाबी। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का किला है, जो भी इस किले में दाखिल हो जाए वो अमान में है। लेकिन इसकी कुछ शराइत है, वलाकिन बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा, और हम इसकी शर्त शराइत में से हैं। तो पता चला कि विलायत हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह से मुत्तसिल होनी चाहिए। विलायत वो विलायत ही नहीं है जो ला इलाहा इल्लल्लाह से मुत्तसिल ना हो, जो तौहीद खुदावंद से मुत्तसिल ना हो। विलायत वही विलायत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह से मुत्तसिल हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो विलायत ला इलाहा इल्लल्लाह से मुत्तसिल हो, जो तौहीद खालिस खुदावंद से मुत्तसिल हो, वही विलायत इमाम की नजर में काबिल कद्र है जो ला इलाहा इल्लल्लाह से मुत्तसिल हो। जो ला इलाहा इल्लल्लाह से मुत्तसिल ना हो वो विलायत नहीं है, वो विलायत नहीं है। तो तमाम अइमा के जमाने में तमाम अइमा ने जुल्म के खिलाफ इहतजाज किया, तमाम अइमा ने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, जिसके नतीजे में सातवें इमाम की उम्र का एक बड़ा हिस्सा जिंदान में गुजर गया, कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये पांच सिफत है, फिरका साजी पर पाबंदी, फिरका साजी के खिलाफ महाजाराई कि कोई फिरका ना बनने पाए, कोई बातिल फिरका जन्म न लेने पाए मुसलमानों के दरमियान। दूसरे इल्म का जब भी इल्म का मुकाबला हो, देखिए जब भी अफकार का तबादला होता है तो जरूरी होता है कि इंसान पहले उन अफकार पर मुसल्लत हो तब जाकर उनका जवाब दे। मगरिब की जानिब से जब उलूम का तर्जुमा होकर अरब में पहुंच रहा था तो जरूरत इस बात की है उस जमाने में और आज के भी जमाने में कि उन मगरिबी अफकार पर इंसान मुसल्लत हो तब जाकर उनका जवाब दे सकता है। शहीद मुतहरी के तालुक से ये बात मिलती है कि मगरिबी अफकार को इस हद तक आप पढ़ चुके थे कि एक एक किताब का जवाब देने के लिए कई कई घंटे मुतालिया और पूरी तरह से उस फिक्र को पढ़कर उसको पी जाते थे, यानी पूरी तरह उस फिक्र को हजम करके तभी मुमकिन है कि इंसान उस फिक्र का जवाब दे सके। और इमाम के जमाने में भी जब मगरबी अफकार तर्जुमा होकर अरब में पहुंची तो शुकूक व शुबहात का बाजार गर्म हो गया। ऐसे मौके पर दीन की बुनियादें सुस्त हो जाती हैं। शुकूक व शुबहात और तरद्दुद जब लोगों में आ जाता तो दीन की बुनियादें सुस्त पड़ने लगती हैं। ऐसे में इमाम ने दीन को इस्तेहकाम बख्शा, ऐसे हालात में इमाम ने दीन की बुनियादों को इस्तेहकाम बख्शा और जुल्म से मुकाबला और फिर सादात और अलवियों की हिमायत, यानी जो भी जुल्म के मुकाबले में ठहरेगा उसको अली इब्न मूसा रज़ा की हिमायत हासिल है, और फिर फुकरा की तरफ से बेतवज्जुही नहीं, फुकरा और मसाकीन की तरफ पूरी तवज्जो पूरी हिमायत फुकरा के साथ, और फुकरा के साथ अच्छा सुलूक, यानी ऐसा कि उनकी दिलाजारी न हो, फुकरा की दिलाजारी न हो। तो ये पांच नुकात इमाम की जिंदगी से, और एक कौल बयान करता हूँ, बयान करके फिर मसाइब की तरफ जाता हूँ। फरमाते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में तीन दिन बड़े हसास होते हैं, जिसको कुरान ने भी जिसका लिहाज फरमाया। हर इंसान की जिंदगी में तीन दिन ऐसे होते हैं जो बड़े हसास हैं। सलासतुम अवशा मिनल मवातिन, तीन मकामात ऐसे हैं जो इंसान, तीन दिन ऐसे हैं जो इंसान की जिंदगी में बहुत अहमियत के हामिल है। पहला दिन यौमा वलिद, जिस दिन उसकी विलादत होती है, यौमा यमूत, जिस दिन वो मरता है, यौमा युबअस, जिस दिन उसको दोबारा कयामत के दिन उठाया जाता है। ये तीन दिन इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, यौमा वलिद, यौमा यमूत, यौमा युबअस, जिस दिन वो पैदा होता है, जिस दिन वो मरता है, और जिस दिन मरने के बाद दोबारा कब्र से कयामत के लिए उठाया जाता है। हिसाब किताब की हजरत ईसा का किस्सा कुरान मजीद में पढ़ते हैं कि जब हजरत मरियम हजरत ईसा के साथ बाहर आई तो लोगों ने क्या कहा, फौरन सुएजन कहकर तोहमत लगाने लगे कि बगैर शादी के मरियम के पास ये बच्चा कहां से आ गया। तो फिर खुदावंद आलम ने खुद बच्चे को बोयाई अता कर दी। बच्चा झूले से कह रहा है, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है, वजअलनी मुबारका, और मैं तुम्हारे लिए मुबारक हूं, मैं हिदायत की नेमत लेकर आया हूं, मैं तुम्हारे लिए मुबारक हूं, मेरे अंदर तुम्हारे लिए बरकत ही बरकत है। तो जो शख्सियतें मुबारक होती हैं वो हिदायत की नेमत से बराबर होती हैं। तो जैसे सुएजन, यानी जैसे ही हजरत मरियम बाहर आई, कहने लगे कि हजरत मरियम पर तोहमत बांधने लगे। सुएजन पहले मरहले में सुएजन, जिसको इस्लाम मना फरमाता है सुएजन ना करे, पहले मरहले में सुएजन, और सुएजन के फौरन बाद जल्दी कजावत कर देना किसी मसले में, जल्दी फैसला ले लेना किसी मसले में। सुएजन का नतीजा ये होता है कि इंसान किसी पर तोहमत लगाने में फिर देर नहीं करता, फौरन तोहमत लगा देता है। हजरत मरियम जैसी शख्सियत पर तोहमत लगाई गई, और जब ये सिलसिले कलाम आगे बढ़ा तो हजरत ईसा फरमाते हैं कि वस्सलाम अलैया यौमा वुलिद व यौमा अमूत व यौमा उबअस, कुरान मजीद, ये सलाम हो मुझ पर कि उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ हूं और जिस दिन मैं मरने वाला हूं और जिस दिन मैं कब्र से उठाया जाने वाला हूं। और ये तीनों विलादत का सालिम होना हमारे हाथ में नहीं है, सालिम विलादत। हम ये दुआ करते हैं कि मामूल हमारे कबाती में अक्सर कहती है कि दुआ कीजिए कि हमको औलाद नरीना हो जाए, औलाद नरीना की दुआ की जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि औलाद नेक और साले, सही और सालिम हो। औलाद नरीना, अब वो नर जब बड़ा हो जाता है सींगे निकल आती है उसको, अब वो सींगों से जब मारने लगता है तो कहते हैं बेतरबियत हो गया। तो औलाद नरीना के बजाय ये दुआ की जाए कि औलाद हमको नेक और साले, सही और सालिम हो, यानी यौमा वुलिद, ये विलादत सही और सालिम हो, ये विलादत का मरहला सही और सालिम गुजर जाए। और फिर मौत का मरहला भी सही व सालिम गुजर जाए। मौत का मरहला सही व सालिम उस वक्त तक नहीं गुजर सकता जब तक के अमल उसका सही व सालिम हो। इंसान का अगर अमल सही व सालिम ना हो तो मौत का मरहला सही व सालिम नहीं गुजार सकता इंसान, और ना फिर उसके बाद यौमे और ना उसके बाद कब्र से उठाया जाने वाला मरहला सालिम रह सकता है अगर इंसान का अमल दुरुस्त ना हो जिंदगी में। अगर इंसान का अमल दुरुस्त हो तो फिर मौत का मरहला भी सही व सालिम गुजर सकता है, और फिर उसके बाद कयामत में कब्र से उठाया जाने वाला मरहला भी सही व सालिम हो सकता है, बशर्ते कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी नेकी और शराफत के साथ गुजारे। अंबिया की अकाश है वतवफना माल अबरार, ऐ अल्लाह हमको नेक लोगों के जैसी मौत दे, ऐ अल्लाह हमको नेक लोगों के साथ हमारी वफात हो। नेक तवफतनी, हजरत यूसुफ फरमाते हैं तवफतनी मुस्लिमा, ऐ अल्लाह मुझे जब इस दुनिया से उस वक्त तक मुझे इस दुनिया से ना उठा जब तक कि मैं मुसलमान ना हो जाऊं, मुझे मुसलमान इस दुनिया से उठा, मुझे नेक लोगों के साथ इस दुनिया से उठा, नेक लोगों के साथ इस दुनिया से उठा। तो ये बहलूल ने एक मरतबा यही हारून को एक मरतबा बहलूल ने कहा, हारून एक मरतबा गुजरा था तो बहलूल ने कहा क्या है हारून, तो हारून को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा मुझसे मैं बादशाह वक्त हूं तुम मुझको नाम से पुकारते हो। तो बहलूल ने जवाब दिया खुदाबंद आलम ने अंबिया को अपने नाम से पुकारा है कुरान में, या ज़करिया, तो क्या तुम पैगंबरों से अफजल हो गए कि तुमको नाम से ना पुकारा जाए। उसने कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। तो बहलूल ने कहा कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते, कुरान अगर पढ़ते हो तो उसमें ये दो आयतें मौजूद है इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, नेक लोग जन्नत की नेमतों में रहेंगे और फाजिर लोग दोजख में जलेंगे। तो तुम खुद तय कर लो कि तुम क्या हो, तुम खुद तय कर लो। कुरान को ये फरमा रहा है इन्नल अबरार लफी नईम, नेक लोग जन्नत में जाएंगे व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और जो बुरे लोग हैं वो जहन्नम में जाएंगे। तुम खुद तय कर लो कुरान की रोशनी में कि तुम क्या हो, अगर तुम नेक हो तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुम समझते हो कि तुम बद हो तो तुम्हारे लिए जहन्नम। सलावत पढ़ते हो तो इंसान के ये तीन दिन उसकी जिंदगी में है, यौमा वुलिद यौमा यमूत यौमा युबअस, उसकी पैदाइश का दिन जिस दिन वो पैदा होता है, और उसके मौत का दिन जिस दिन वो मरता है, और वो दिन जिस दिन वो कब्र से उठाया जाएगा कयामत के महशर के मैदान के लिए। मौत उसी की सालिम हो सकती जिसकी पूरी जिंदगी सालिम गुजरी हो, मौत उसी की सालिम हो सकती जिसकी पूरी जिंदगी सलामती के साथ उसने गुजारी, और सलामती तकवा और परहेजगारी में गुजर, सलामती का रास तकवा और परहेजगारी। और यही इन्हीं मराहिल को तय करते हुए यानी ये तमाम हिदायतों का सामान फराहम करने वाले अइमा के साथ क्या किया गया, जब भी वो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते कैद बंद की सोहबतें उनको बर्दाश्त करनी पड़ती। इमाम रजा अलैहि सलाम के ताल्लुक से ये मिलता है कि जब आप मदीने से जा रहे थे तो घर वाले ज़ारो क़तार गिरिया फरमा रहे थे आपके अहलो ख्याल, ज़ारो क़तार इस तरह से जिस तरह से कोई जनाजा आपके घर से रवाना हो, इसका सबब जब आपसे पूछा गया कि क्यों आपके अहलो अयाल इतना गिरजा फरमा रहे, तो फरमाया कि ये सफर ऐसा है जिससे मैं वापस पलटने वाला हूँ, ये वो सफर है जिससे मैं पलट कर फिर वापस आने वाला नहीं हूँ। इमाम को मर्ब ले जाया गया और मर्ब में रखा गया खुरासान तूस में, जब इमाम को रखा गया और वो वक्त आया कि एक दिन इमाम ने अपने गुलाम अबासल से कहा कि अबासल मैं कल जब मामूर के दरबार में जाऊं और मैं वापस आऊं और अगर मेरा सर बरहना रहे तो मुझसे बात करना, और अगर मेरा सर ढका रहे तो मुझसे बात न करना, अगर मेरे सर पर अबा पड़ी रहे मेरा सर ढका रहे तो मुझसे बात न करना, समझना कि मेरा वक्त आखिर आ चुका है। दूसरा दिन जब नमूदार हुआ मामून का गुलाम इमाम की खिदमत में आया और कहने लगा कि मामून ने आपको दरबार में तलब किया, इमाम घर से चले मामून के दरबार में जब पहुंचे तो मामून अंगूर खा रहा था। इमाम तशरीफ फरमा हुए, उसने इस्तकबाल किया, पेशानी को बोसा दिया, पिटलाकर कहने लगा कि ये ऐसे अंगूर हैं जो मैंने कभी ऐसे अंगूर नहीं खाए। तो इमाम ने फरमाया कि जन्नत में इससे बेहतर अंगूर मौजूद है, जन्नत के अंगूर इससे बेहतर है। तो उसने कहा कि आप भी इस अंगूर से तनावुल फरमाए। इमाम तनावुल फरमाना नहीं चाहते थे, उसने इसरार किया तो इमाम ने तीन दाने उस पोशे से इमाम ने तनावुल फरमाए। और जैसे ही इमाम ने उन तीन दानों को तनावुल फरमाया, आपकी हालत दिगरगुल होना शुरू हो गई। इमाम ने अंगूरों का बकिया पोशा वहां पर फेंक दिया और फिर वापस अपने दौलतसरा तशरीफ लाए। अबासद ये देखते हैं कि जब इमाम आ रहे हैं तो आपकी सर पर अबा है, इमाम की सर पर रिदा है। अबासद ने कोई सवाल नहीं किया इमाम से, इमाम सीधा अपने हुजरे में दाखिल हो गए। और जब हुजरे में दाखिल होकर अंदर से हुजरे को बंद कर दिया, सैयद शुहदा और इमाम रजा के दरमियान दो मुमासिलतें पाई जाती हैं। एक मुमासिलत ये है कि जब इमाम रजा अलैहिस्सलाम की शहादत का वक्त करीब आया तो आपका बेटा आपके करीब नहीं था, आपके अहल वयाल में से कोई आपके करीब नहीं था। सैयद शोहदा की शहादत का वक्त जब करीब आया तब भी आपके करीब आपके अहल वयाल में से कोई नहीं था। जहां पर ये मुमासिलतें भी पाई जाती है वहां पर कुछ फर्क भी पाया जाता है। वो फर्क ये है कि जब बएजाज मोहम्मद तकी इमाम रजा अलैहिस्सलाम के शहादत के ऐन करीब पहुंचे हैं, शहादत के ऐन करीब पहुंचने के बाद गुस्ल व कफन का एहतमाम किया है और रात में मामूर का ये हुक्म था कि दिन में दफनाया न जाए क्योंकि शोरिश का डर था, तो रात में इमाम को दफनाया गया बड़े ही गरीब तरीके पर। लेकिन यहाँ पर करबला में जब जैनुल आबिदीन पर एजाज कूफे से करबला आए हैं तो यहाँ पर इमाम की लाश को देख रहे हैं। इमाम की लाश के टुकड़े करबला की जमीन पर बिखरे हुए हैं। आप एक हसीन तलब फरमाते हैं वली हसन से, उन हसीन पर उन टुकड़ों को जमा करके कब्र में रख कर कब्र बनाकर उस पर लिखते हैं आजा कब्र हुसैन खुदे अच्छाना। ये हुसैन की मजार है जिसको प्यासा शहीद कर दिया गया। I'm going to go to the hospital.